हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। ज़ोया को अबीर की खुद की बनाई पट्टी हटाना बेहद बुरा लगा था। उसने ठान लिया था कि वो चाहे कुछ भी हो, अबीर की पट्टी करके ही जाएगी। अबीर गुस्से में बालकनी से सीधा बाथरूम में शावर लेने चला गया था, लेकिन ज़ोया ने ठान लिया था कि वो अबीर की मरहम पट्टी किए बिना वहाँ से नहीं जाएगी। ज़ोया कितनी देर तक अबीर के बाथरूम से बाहर निकलने का इंतज़ार करती रही, लेकिन अबीर बाथरूम में खड़ा ज़ोया के बारे में ही सोच रहा था। वो सोच रहा था कि उस लड़की से उसे इतनी मोहब्बत क्यों है, क्यों वो उसके सारे दुख दूर करना चाहता है, क्यों उस लड़की के आसपास रहना उसे सुकून देता है। अबीर कितनी देर तक ज़ोया के बारे में सोचता रहा, उसे वक्त का अंदाज़ा ही नहीं रहा। ज़ोया उसका इंतज़ार करते करते थक गई थी और अबीर के बेड पर ही सो गई। उसका एक पैर नीचे लटका हुआ था और उसके एक हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स का डिब्बा था। अबीर आराम से नहा धोकर बाहर निकला। उसे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि कोई उसका इंतज़ार करते करते उसके ही बेड पर सो गया है। वो अपने गीले बालों को तौलिए से पोंछता हुआ बाहर निकला था और उसने केवल एक तौलिया बांध रखा था। अचानक बाल पोंछते हुए अबीर की नज़र ज़ोया पर पड़ी। वो अपने बाल पोंछना भूल गया और ज़ोया को देखने लगा। ज़ोया के चेहरे पर हल्की हल्की चांदनी पड़ रही थी और उस चांदनी में उसका चेहरा बेहद दमक रहा था। अबीर बेख्याली से उसे देख रहा था। उस वक्त अबीर के लिए ये अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल था कि चांद की चांदनी ज़्यादा खूबसूरत है या फिर उसकी बीवी ज़ोया। ज़ोया सोते हुए एकदम किसी मासूम बच्चे जैसी लग रही थी। उसके होंठ हल्के हल्के खुले हुए थे। बच्चों जैसी मासूमियत उसके चेहरे पर छा गई थी। अबीर का दिल उसे इस तरह से देखकर जोरों से धड़क रहा था। अबीर का दिल किया कि वो ज़ोया की नर्म गुलाबी होंठों को चूम ले, लेकिन वो अपने आप पर काबू किए हुए खड़ा रहा। अबीर ने सोचा, इसे ठीक तरीके से सुला देता हूँ। उसने ज़ोया का एक पैर, जो बेड से नीचे लटका हुआ था, उसे उठाकर पूरी तरह से बेड पर रखने की सोची। फिर उसने सोचा, अगर ये उठ गई तो फिर से उसे गलत समझेगी और कहेगी कि मैं उसके पास आने के लिए बहाने ढूंढ रहा हूँ और कहीं इस बार इंजेक्शन की जगह मेरा सर ही न फोड़ दे। अबीर खुद से ही सवाल जवाब कर रहा था। अचानक ज़ोया अंगड़ाई लेते हुए करवट बदलने लगी। जैसे ही ज़ोया ने करवट बदली, चूंकि अबीर उसकी टांग ठीक करने के लिए बिल्कुल उसके करीब घुटनों के बल बैठा हुआ था और जैसे ही ज़ोया अपनी नीचे लटकी हुई टांग ऊपर करने लगी, उसी वक्त अचानक उसकी टांग अबीर के मुंह पर पड़ गई। अबीर खुद को संभाल नहीं पाया और एकदम से पीछे की ओर गिर गया। धम्म से अबीर के गिरने की आवाज़ आई। ये सुनकर ज़ोया अचानक उठ बैठी। ज़ोया खुद को देखने लगी कि वो कहाँ पर है। ज़ोया ने अपने हाथ में पकड़े हुए फर्स्ट एड बॉक्स को देखा और उसे याद आया कि उसे तो अबीर की मरहम पट्टी करनी थी। ज़ोया सोचने लगी, क्या अबीर राठौड़ अभी तक नहा रहा है? अभी तक वो बाहर नहीं आया? चूंकि ज़ोया बेड पर बैठी हुई थी और अबीर उसकी लात लगने की वजह से नीचे गिरा हुआ था, इसलिए बेड पर बैठी हुई ज़ोया को वो दिखाई ही नहीं दिया था। ज़ोया, आखिर ये मिस्टर अक्कड़ू राठौड़ अभी तक बाथरूम से बाहर क्यों नहीं निकले हैं? आखिर ये कर क्या रहे हैं? हालांकि ज़ोया ने काफ़ी हल्का हल्का बोला था, लेकिन अबीर के कानों में वो बखूबी सुनाई दे रहा था। जैसे ही ज़ोया ने अबीर को अक्कड़ू कहा, उसकी भौहें तन गईं और इससे पहले कि अबीर उठता, ज़ोया बाथरूम की ओर देखते हुए बेड से नीचे उतरने लगी। पहला कदम तो ज़ोया ने रख लिया था, लेकिन जैसे ही उसने दूसरा कदम रखा, उसका पैर अबीर के पैर पर पड़ गया। ज़ोया अपना बैलेंस नहीं बना पाई और वो चीखती हुई सीधा तौलिया लपेटे हुए अबीर के ऊपर जा गिरी। ज़ोया का चेहरा अबीर के दिल के बेहद करीब था। अचानक से अबीर के ऊपर गिरने से ज़ोया के पेट में काफ़ी चोट लग गई थी और वो कराह उठी। अबीर उसका दर्द भरा चेहरा बहुत अच्छी तरह से देख सकता था। एक तो अबीर केवल तौलिए में था और ज़ोया उसके गीले जिस्म पर जा गिरी थी। कमरे में भले ही एसी चल रहा था, लेकिन अबीर और ज़ोया के बीच में उस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। चूंकि अचानक गिरने की वजह से ज़ोया के पेट में काफ़ी दर्द हो गया था, सो अबीर ज़्यादा देर उसे अपने ऊपर नहीं रख सकता था, इसलिए अबीर उसके उठने में मदद करने लगा। हालांकि ज़ोया को इतने करीब पाकर उसका मन नहीं था कि वो उसके ऊपर से हटे, लेकिन ज़ोया को ज़्यादा देर उस सिचुएशन में रखना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता था। अबीर ये बात भली भांति जानता था, जैसे ही ज़ोया पूरी तरह से खड़ी हुई, वो अपने पेट पर हाथ फेरने लगी क्योंकि उसे काफी दर्द हो रहा था। तभी अबीर अपना तौलिया सही करते हुए उसके सामने खड़ा हो गया। ज़ोया को अबीर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोच रही थी कि ये अकड़ू राठौड़ कहीं और नहीं लेट सकता था, इसे जरूरी था नीचे लेटना। अगर ये नीचे नहीं लेटता तो न ही वो इससे टकराती और न ही उसके पेट में चोट लगती। अबीर को यूं केवल तौलिये में खड़ा देख ज़ोया ने अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया और बोली, मिस्टर राठौड़, क्या आपको कहीं और जगह नहीं मिली थी क्या सोने की? आप नीचे क्यों लेटे हुए थे, वो भी ऐसे बिना कपड़ों के? क्या आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप कपड़े पहन सकें? अबीर उसकी बात सुनकर पूरी तरह से हैरान रह गया। वो हैरान होकर उसकी ओर देखने लगा और सोचने लगा कि इस लड़की को लग रहा है कि मैं नीचे सोया हुआ था, जबकि इसने मुझे खुद लात मारकर नीचे गिराया था। ओहो शिट, अबीर ने मन ही मन अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा। अबीर ज़ोया को कुछ कहना चाहता था लेकिन उसने उसे कुछ नहीं कहा। वो वापस पलट गया और अलमारी में से अपने कपड़े निकालने लगा। जल्दी ही उसने हाफ स्लीव का ब्लैक रंग बनियान पहना और एक लोअर डालकर वो बेड के एक सिरे पर जाकर लेट गया। ज़ोया कितनी देर तक दूसरी ओर मुंह करके खड़ी रही। ज़ोया बिना पीछे मुड़े बोली, अबीर जी आप पहले कपड़े पहन लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। ज़ोया को जब काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिला तो वो धीरे से पीछे की ओर पलटी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दिया। ज़ोया चौंक गई लेकिन जैसे ही उसकी नज़र बेड पर गई और वहाँ अबीर को लेटा हुआ देखकर ज़ोया का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँच चुका था। ज़ोया मन ही मन सोच रही थी, एक तो इस अकड़ू राठौड़ की वजह से मैं गिर गई और मुझे पेट में चोट भी लग गई, और ये इंसान बिना किसी चीज़ की परवाह किए आराम से सो गया और पूछा तक नहीं कि मुझे ज़्यादा तो नहीं लगी। अबीर का इस तरह का रूखा व्यवहार देखकर ज़ोया का दिल अजीब सा होने लगा। ज़ोया का अबीर से एक जोरदार झगड़ा करने का मन कर रहा था। अचानक यूं अबीर के लेट जाने से ज़ोया को काफी बुरा लग रहा था। ज़ोया को अबीर को यूं लेटा हुआ देखकर समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। क्या वो अपने कमरे में वापस चली जाए या फिर अबीर के सीने में जो चोट लगी है उस पर दवाई लगाए? ज़ोया कुछ सोचकर अबीर के पास जाकर खड़ी हो गई और बोली, मिस्टर राठौड़ उठिए, मुझे आपसे बात करनी है। लेकिन अबीर ज़ोया की बात अनसुनी करते हुए दूसरी करवट बदल कर लेट गया। ज़ोया को अबीर की इस हरकत पर काफी गुस्सा आया और वो गुस्से से खड़ी होकर अपने होंठ काटने लगी। ज़ोया का मन अजीब सा बेचैन हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अबीर से जोरदार झगड़ा करे और अपने अंदर की भड़ास निकाले, लेकिन अबीर तो जैसे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। उसका मन आज ज़ोया से बात करने का ही नहीं था, हालांकि उसका दिल तो बार बार उसकी ओर खींचा चला जा रहा था, लेकिन वो सब कुछ भूलकर खुद पर काबू किए हुए पड़ा रहा। अबीर देखना चाहता था कि ज़ोया उसका अटेंशन पाने के लिए क्या करती है और क्या हथकंडा अपनाती है। ज़ोया ने अबीर को एक बार फिर पुकारा, मिस्टर राठौर, लेकिन अबीर ने अनसुना कर दिया।
ज़ोया परेशान होकर बेड के एक सिरे पर बैठ गई। क्योंकि उसे काफी दर्द था तो वो ज्यादा देर खड़ी नहीं हो पा रही थी। ज़ोया सोचने लगी कि अब क्या किया जाए, और अभी ज़ोया सोच ही रही थी कि तभी अबीर के दरवाजे पर दस्तक हुई। ज़ोया ने धीरे से उठकर दरवाजा खोला और उसने देखा एक 25-26 साल का लड़का हाथों में खाने की ट्रे लिए हुए खड़ा था। रिया ने ज़ोया के लिए जो खाना दिया था, अबीर ने ही उस लड़के को वो खाना गर्म करने के लिए दिया था। उस लड़के ने ज़ोया को देखकर कहा, मैडम साहिबा ने ये खाना गर्म करने के लिए दिया था, मैंने गर्म कर दिया है तो क्या मैं ये खाना अंदर आकर लगा दूँ? ज़ोया ने एक पल कुछ सोचा और एक शैतानी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। ज़ोया सोचने लगी कि अगर उसकी जगह यहाँ अबीर राठौड़ होता तो वो इस लड़के को बाहर से ही चलता कर देता, लेकिन ज़ोया ऐसा नहीं करेगी। अबीर को उठाने के लिए ज़ोया के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आ चुका था। ज़ोया को इस तरह से सोच में गुम देखकर उस लड़के ने कहा, मैडम मैडम क्या मैं ये खाना अंदर लगा दूँ? तब ज़ोया ने एक नज़र अबीर पर डाली जो जानबूझकर सोने की कोशिश कर रहा था, और फिर उस लड़की की ओर देखते हुए बोली, हाँ हाँ आओ आओ अंदर आओ और अंदर आकर खाना लगा दो। जैसे ही ज़ोया ने ये कहा, अबीर का पारा हाई हो गया, लेकिन वो अपने गुस्से को दबाए हुए पड़ा रहा।